बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं, बेली राजपूता की मलका, जिसकी मुसन्निफा है निमरा अहमद। ये किताब आपकी खिदमत में करतबा ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से पेश की जा रही है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 8। सफा नंबर 75। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता लेडी शेखर, वो सीधा होकर तलखी से बोला। माया पानी को देख रही थी, वहां सिर्फ एक साया था, झुकी हुई औरत और उसकी कंधे पर पड़ी चोटी, और मैं मरने वाले आदमी के सच पर तब तक ऐतबार नहीं करूंगी जब तक मैं शेखर को नहीं देख लेती, वरना मेरे लिए वो मर चुका है। औरत के साये के ऊपर से परिंदों के गौल का साया उड़ रहा था। माया ने गर्दन उठाकर आसमान को देखा, वहां कौवे एक गौल में शुमाल की जानिब उड़ते जा रहे थे। जिस दिन शेखर की मौत वाकई हुई थी, उस दिन वो कहां था? मैं उस रोज अमृतसर में थी, मुझे नहीं मालूम। यकदम ही वो तेजी से बोली, लहजा तल्ख हो गया। बदर इसी तरह सामने सुर्ख किनारों वाले बादलों को देख रहा था। सब क्या बताते हैं, वो आखिरी बार किधर गया था? मुझे मालूम नहीं है। वो सीने पे हाथ बांधे कुएं से टेक लगाए खड़ी थी। किसी मुलाजिम ने कुछ तो बताया होगा। मालूम नहीं, वो भी अब सुर्ख बादलों के पीछे डूबते सूरज को देख रही थी। हाँ, रूपा ने आखिरी दफा उसे कच्चे रास्ते पे देखा था। खोजी ने भी यही बताया था कि वो मेहमान खाने में जाने से कबल पुराने कब्रिस्तान की तरफ। एकदम वो रुक गई और बदर को देखा। वो भी जैसे चौंक कर उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर माया ने सर झुका दिया। शायद उसने हार मान ली थी। शेखर मरने से पहले पुराने कब्रिस्तान गया था, बदर ने दोहराया। उसने जवाब नहीं दिया। इसी तरह सर झुकाए कदमों में बिखरे कच्चे बेर देखती रही। क्या तुम्हें अब भी मेरी बात का यकीन है? माया ने थके थके अंदाज में सर उठाया। उसकी सुनहरी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। वाकई बदर, क्या वो जिंदा हो सकता है? अगर वो हुआ तो हमें खुशी होगी। उसके गुमसुम से चेहरे पर मकमूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो गौर से उसके चेहरे पर उतरती खुशी की रमक को जांच रहा था। बहुत मोहब्बत थी तुम्हें उससे? है, अभी तक इतनी ही है। अगर वो जिंदा है तो क्या तुम मेरा शौहर ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वो फीका सा मुस्कुराया। मगर याद रखना, मंगल सिंह के कातिल के साथ ना मेरी हमदर्दी होगी और ना तुम्हारी होनी चाहिए। उसके सख्त लहजे पे माया ने छिटक कर बगौर उसकी आंखों में देखा। बहुत तफाखुर से मुस्कुराई। तुम जलते हो शेखर से। उठी हुई गर्दन जताता हुआ मकरूराना अंदाज, वो भी एक अदा लिए हुए। वो इतना मशहूर था कि तर्दीद भी ना कर सका। वो उसे ठीक कहता था। वो वाकई मलका थी, बेली राजपूता की मलका। तुम्हें शेखर से कोई रकाबत नहीं होनी चाहिए। उसने चोटी कंधे से कमर पर फेंक दी। लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन अगर वो भूत शेखर है तो मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। इसका फैसला वक्त करेगा। माया ने सर उठाकर आसमान को देखा। सुर्ख बादल बिखरते जा रहे थे। شام ڈوبنے کو ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر جاتے جاتے مڑی، سنو مجھے حویلی تک چھوڑ آؤ گے؟ مجھے تمہارے بیلی راجپوتا کے رستے نہیں آتے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے نہیں آتے تو یہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ جھیمپ کر ہنس دی۔ میں تو راستہ بھٹک کر ادھر مدد کی تلاش میں بیٹھی تھی، ورنہ تمہیں لگتا ہے راجپوت اپنی بہو بیٹی سے پانی بھروائیں گے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ کھیت سامنے آ گئے۔ وہ وہیں رک گیا۔ لیجئے لیڈی شیکھر، آپ کی حویلی سامنے ہے، اندر تک نہیں آؤ گے؟ وہ کھیتوں کے ساتھ کھڑے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹھاکر گوپال راج نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے اتنی دور نہ تھی۔ اندر آنے کا فائدہ؟ راجپوتوں کی مہمان نوازی کا لطف نہیں لوگے؟ وہ تلخی سے مسکرا دیا، کچھ بولا نہیں۔ مایا نے اس کے پیچھے کھیتوں کے اس پار کچے راستے کو دیکھا جو دور تک جاتا تھا۔ وہاں سے پرانا قبرستان نظر نہیں آتا تھا، مگر قبرستان کی عجیب خوفناک اور پورا سرار فضا پورے کچے راستے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، جیسے دھول مٹی کی اس پگ ڈنڈی پہ اندیکھی روحیں سفید لبادوں میں اڑتی پھر رہی ہوں۔ مایا نے ایک جھرجھری لی اور واپس تیزی سے حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑے گیٹ کے سامنے حویلی کی واحد موٹر کھڑی تھی۔ اس نے رک کر معنی خیز مسکراہٹ سے جیپ کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جو کچھ ٹھاکر گوپال راج کو دکھانا چاہتی تھی دکھا چکی تھی۔ گوپال سے اس کا سامنا کھانے کی میز پہ ہوا۔ حویلی میں پہلے جانے کھانے کا کیا طریقہ کار تھا، مگر جب سے مایا آئی تھی اس نے کھانا ہمیشہ ڈائننگ ہال میں لکڑی کی قیمتی ڈائننگ ٹیبل پہ لگتے دیکھا تھا۔ شاید وہ ڈائننگ ہال محض انگریزوں شہری مہمانوں کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رکابی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال آگے پیچھے داخل ہوئے۔ نمسکار دیوی، ٹھاکر رگھوناتھ نے کرسی کھینچتے ہوئے سادہ انداز میں کہا۔ مایا نے سر اٹھایا، گڈ ایوننگ، اور سر جھکا کر پھر سے کھانے لگی۔ حویلی میں کوئی کسی کا کھانے پہ انتظار نہیں کرتا تھا۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ انتظار کیا بھی نہ کرے۔ وہ نہ بھی کہتے تو بھی وہ راجپوتوں کا انتظار کرنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ اپنے سب کام وقت پر کرتی تھی، بنا کسی کی مداخلت یا انتظار کے۔ گوپال خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مایا آرام سے پلیٹ میں موجود چاول ختم کرتی رہی۔ کل پٹواری آئے گا، نہر والی زمین کا سودا ہو گیا ہے، مناسب دام مل رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ سے اس علاقے میں کوئی زمین نہیں خریدے گا، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہے تھے۔ بہت بہتر، وہ رقابی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نزاکت سے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ کون خرید رہا ہے وہ زمین؟ میں، گوپال نے سر اٹھا کر فاتحانہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ٹھاکر رگھوناتھ مصروف سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ اس کے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آپ کو وہ زمین تو بیچنی ہے نا؟ مگر وہ آپ کو نہیں بیچنی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کو بیچنی ہے، دام تو آپ کو ایک ہی ملیں گے۔ وہ لاپرواہی سے کھا رہا تھا۔ اور مجھے یہ کون بتائے گا کہ بہترین دام کون سے ہیں؟ وہ سخت نگاہوں سے یک تک گوپال کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا جی پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ مایا نے ٹھاکر کو دیکھا، وہ ابھی تک انہمناک سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مسترب سی ہو کر کھڑی ہوئی۔ مگر میں وہ زمین آپ کو نہیں بیچنا چاہتی چھوٹے ٹھاکر صاحب، उसकी आवाज में गुस्सा उतर रहा था। गोपाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर ठाकुर रघुनाथ ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। आराम से माया बेटा, उनके लहजे की शफकत में मसनूईपन था। अगर आप बेचना नहीं चाहती तो ठीक है, हम किसी और पार्टी से बात कर लेंगे, आप अपनी डिमांड बता दें, मैं मशवरे के बाद बताऊंगी। हाँ, आप पटवारी से मशवरा। मैं अपने शौहर से मशवरे के बाद बताऊंगी। ठाकुर रघुनाथ के हाथ से निवाला गिर गया, पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। वो तेज तेज चलती हुई दरवाजे तक आई। आप शादी कर रही हैं? दोनों बाप बेटा हक्का बक्का उसे देख रहे थे। बमुश्किल ठाकुर रघुनाथ के मुंह से निकला, जहरा थाल में चावल लिए मगन सी गुनगुनाती हुई बालाई मंजिल के बड़े से बरामदे से गुजर रही थी। एकदम ठिठक गई। नीचे बड़े से दालान के कोने में पीपल के घने दरख्त के साथ झूला बंधा था और बदर उस झूले के साथ खड़ा था। उसे लगा झूले पे कोई बैठा है। वो चंद कदम आगे आई और रेलिंग से नीचे झांका। नीचे का मंजर देखकर उसे हैरत का झटका लगा। वो माया थी मेम साहब। थाल पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो सांस रोके उसे देख रही थी। वो बहुत शाहाना मुतमईन से अंदाज में झूले पे बैठी थी। झूला हौले हौले झूल रहा था। उसने सफेद स्कर्ट, सफेद ब्लाउज जिसकी आस्तीन कलाई तक आती थी पहन रखा था। उस जमाने में अंग्रेज शुरफा की औरतों में खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपने को शराफत और खानदानीपन की अलामत समझा जाता था। अभी दूसरी जंग अजीम नहीं हुई थी और जिल्द जाहिर करने का रिवाज नहीं पड़ा था। उसकी गोद में सफेद रंग का हैट पड़ा था। वो हैट गोद में रखे हौले हौले झूला ले रही थी। सुनहरी बाल शानों पे बिखरे थे। मोतियों की लड़ी सामने को थी और वो खुद गर्दन उठाए मुकाबिल खड़े बदर से हंसते हुए कोई बात कर रही थी। बदर की जहरा की जानिब पुश थी। वो भी गर्दपेश थे, बेखबर उसकी जानिब मुतवज्जा था। वो सुस्त कदमों से चलती हुई बरामदे तक आई जहां चाची उसका इंतजार कर रही थी। बड़ी देर कर दी जहरा, उसने बिना जवाब दिए थाल चाची को थमा दिया और खुद दीवार से टेक लगाकर झूले का मंजर देखने लगी। बरामदे के कोने पे नीचे लगे पेड़ का सिरा पहुंच रहा था और साया था। पत्तों से लदी शाखें बरामदे में झुककर आ रही थी। वहां से माया, बदर और पीपल के दरख्त के साथ बंधा झूला शाखों के बीच झरोकों से नजर आ रहा था। जहरा इसी तरह बदर को देखे गई। उसने दरमियान से पत्ते नहीं हटाए। दरमियान में वो बहुत कुछ आ गया था। वो क्या क्या हटाती? उधर क्या देख रही है जहरा? चाची चावल साफ करती सर झुकाए बोली तो उसने गर्दन फेर कर चाची को देखा। फिर कुछ बताने के लिए लब खोले मगर रुक गई। चाची सर झुकाए बैठी थी और दालान को नहीं देख रही थी। वो ये मंजर पहले ही देख चुकी थी। कब आई ये? अभी थोड़ी देर हुई है, चाची आम से लहजे में कहकर चावल से कंकर चुनती नहीं। और क्यों आई है ये इधर? वो रीलिंग की जानिब से रुख मोड़कर चाची की तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। चाची ने सर झुकाया। अब जहरा की पुश्त पर चाची को सिर्फ झुकी शाखें दिखाई दे रही थी। माया, बदर और झूला छुप गए थे। कोई काम होगा उसे बदर से, बहुत देर बाद चाची बोली। बदर कब से राजपूतों के काम करने लग गया? वो चमक कर बोली। वो राजपूत नहीं है मेरी धी, वो फिरंगी है। बदर को तो फिरंगी कभी अच्छे नहीं लगे। खुद तो कहता था ये फिरंगी हम पे गासिब हैं और हम इनके गुलाम। इसमें मेम साहब का क्या कसूर? कसूर है, गुस्से से बोलते बोलते जहरे का गला रुंध गया। वो बदर को अपनी तरफ माइल कर रही है। वो बच्चा है जो माइल हो जाएगा। बच्चे माइल नहीं होते चाची, जवान मर्द माइल हो जाते हैं। निझल्ली, तू उसको नजरअंदाज कर, वो कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आई है? चाची पुरसुकून सी कंकर चुनकर एक तरफ कर रही थी। वो जल्द ही इंग्लिस्तान वापस चली जाएगी। नहीं चाची, वो बदर को लेकर ही इंग्लिस्तान जाएगी। क्या इंग्लिस्तान में मर्द खत्म हो गए हैं जो वो हिंदुस्तानी साथ ले जाएगी? शेखर भी तो हिंदुस्तानी मर्द था। जहरा के पास हर बात का जवाब था। शेखर की और बात थी भी, वो हिंदू था और बदर मुसलमान है। ये लड़की हिंदू है, नहीं ये ईसाई है, मुझे बदर ने खुद बताया था। जाने दे जहरा, तू भी किसका गम करती है? ये घर बसाने वाली औरत नहीं है, ये और तरह की औरत है। तेरी चाची ने भी दुनिया देख रखी है। इसके नाजो अंदाज गौर से देख, मोहब्बत और जस्त के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। जहरा ने पलट कर नीचे दालान को देखा। पीपल के साथ बंधा हुआ हौले हौले हिलता झूला खाली पड़ा था। बदर अकेला उसके साथ खड़ा, जैसे कुछ सोच रहा था। वो चली गई चाची, जहरा ने इत्मीनान से गहरी सांस खारिज की। दिल को जैसे ढेरों सुकून मिला था। और फिर इस सुकून के साथ वो वापस चाची की तरफ मुड़ी और तब उसने देखा माया सामने चौखट में खड़ी थी। जहरा का दिल धक से रह गया। वो क्या और कितना सुन चुकी थी। उसने शर्मिंदा सी नजर माया पर डाली। उसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट सा मुस्कुराता था। जहरा कुछ अंदाजा ना कर पाई। चाची भी इसी कदर शर्मिंदगी से माया को देख रही थी। चावलों का थाल उसने कप का नीचे रख दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जहरा के करीब आई और उसके बिल्कुल मुकाबिल रुक गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। नीचे झूले के साथ खड़े बदर ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा। पीपल के पेड़ की ऊपरी शाखों के पार उसे रेलिंग दिखाई दे रही थी। वहां बरामदे में दो लड़कियां खड़ी थी, एक सियाह शलवार कमीज और रंगदार परांदे वाली जहरा बतूल और उसके सामने सफेद स्कर्ट ब्लाउज और सुनहरी बालों वाली माया फर्नांडिस। सेकंड के हजारवें हिस्से में उसने उन दोनों के चेहरों का मवाजना किया। तेल लगे बालों का परांदा बनाए, चेहरे पे चंद झूलती लटों वाला गंदुमी चेहरा और दूसरा सुनहरी आंखों वाला चेहरा जिस पे हैट के छज्जे से जालीदार नकाब गिर रहा था। ये सामने की बात थी कि जहरा ज्यादा खूबसूरत थी और ये भी सामने की बात थी कि इस फिरंगी लड़की में कोई ऐसा तिलिस्म जरूर था जिसके सामने बेली राजपूता की सबसे सुंदर लड़की दिखाई नहीं देती थी। जब वो किसी जगह होती तो बस वही वहां होती थी, बाकी हर फर्द हर जीनव पस मंजर में चला जाता था। वो राज करने के लिए पैदा हुई थी, उसे देखकर यही लगता था। बदर को माया के हिलते हुए लब दिखाई दिए, मगर इतनी दूर से वो अल्फाज नहीं सुन सकता था। सुन भी लेता तो समझ ना पाता। उन्हें समझने के लिए अभी उसे बहुत वक्त और तजर्बा दरकार था। तुम भी किसका गम करती हो जहरा, तुम्हारी चाची ठीक कहती हैं। वो सुनहरी आंखों से जहरा की आंखों में देख रही थी। लबों पे वही मासूम खूबसूरत मुस्कुराहट थी। माया घर बसाने वाली औरत नहीं है, माया तो बहुत खूबसूरत औरत है, उसकी दुनिया बहुत अलग है, तुम सबसे बहुत अलग। जहरा पलक झपक के बगैर उसकी सुनहरी आंखों में देखी गई। माया किसी को अपनी तरफ माइल नहीं करती, मुतवजा नहीं करती, खींचती नहीं है, लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। वो माया के साथ चलना चाहते हैं, माया का हाथ थामना चाहते हैं। माया उन्हें अपने साथ चलने देती है मगर उनका हाथ कभी नहीं थामती। हाथ थामेगी तो जब बिछड़ेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा और माया दिल तोड़ने हिंदुस्तान नहीं आई। वो लोगों को अपने साथ अपने रास्ते पे चलने देती है। तुम बुरा मत मानो, आखिर कितनी देर वो इस अनजान रास्ते पर चलते रहेंगे, कब तक उसके कदम से कदम मिलाते रहेंगे। माया का रास्ता तो बहुत अलग, बहुत जुदा है। वो कितनी ही दूर उसके साथ क्यों ना चल लें, क्या फर्क पड़ जाएगा। माया तो एक दिन उस रास्ते पे चलते चढ़ते उड़ने लगेगी, तब वो क्या करेंगे, उड़ने के लिए पर कहां से लाएंगे। माया ने जब हाथ नहीं थामा तो फिर पर कैसे देगी। जहरा चुपचाप उसे सुने गई, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो ठीक कहती थी, वो किसी को माइल नहीं करती। लोग पूरी कच्ची डोरी से खींचे चले आते हैं। आज बहुत दिनों बाद जहरा को माया बुरी नहीं लगी थी, उसको इससे नफरत, रकाबत और हसद महसूस नहीं हुआ था। आज पहली दफा उसे वो बेजरर लगी थी। वो इसी तरह गुमसुम सी सफेद जाली के पीछे मौजूद मोमी चेहरे को देखे गई, पर क्या फर्क पड़ता था। अगर वो जहरा से ज्यादा हसीन नहीं थी तो वो तो साहरा थी, और जहरा को सहार करना कहाँ आता था। तुम भी किसका गम करती हो जहरा। वो मुस्कुराई और फिर पलट कर वापस सीढ़ियां उतर गई। उसकी लंबी स्कर्ट जीनों पे से पीछे फिसलती गई। जहरा पत्थर का बुत बनी गुमसुम सी सीढ़ियों के किनारे पे पड़े पर्दे को हिलता देखती रही। वो नीचे आई तो बदर उसके इंतजार में खड़ा था। वो बेनियाज से अंदाज में झूले पे बैठ गई। झूला आगे पीछे हौले हौले झूलने लगा। माया, बदर ने उसे पुकारा। वो मुड़े बिना बेनियाजी से क्यारियों को देखती रही। मिली जहरा से? उसने जवाब नहीं दिया, बस यूं ही फूलों को देखे गई। वो इसी तरह मुंतजिर सा झूले की रस्सी थामे खड़ा रहा। पीपल की ऊपरी शाखों के उस पार खड़ी जहरा इसी तरह खोई खोई सी दोनों को देख रही थी। बहार आ गई है, फूल बहुत खुशनुमा लगते हैं तुम्हारे बेली राजपूता में। फिर उसने चेहरा मोड़ा। तुम्हारी कजन जहरा? बदल ने सवालिया निगाह से उसे देखा। शी इज इन लव विद यू। वो मुस्कुराती निगाह के साथ पूछ रही थी। मालूम नहीं, वो शाने उचकाता अनजान बन गया। माया हंस पड़ी। अदाकारी मत करो। क्या? उसने फिर बेखबरी दिखाई। वो झूले से उठ खड़ी हुई और चेहरा उसके बिल्कुल सामने ले आई। कम अज कम मेरे सामने अदाकारी ना करो, मैं तो लंदन। एकदम बोलते हुए वो खामोश हो गई। बदर ने अधूरे फकरे पे ध्यान नहीं दिया। सही, वो गहरी सांस लेकर रह गया। खैर, मैं कुछ कह रहा था। कब? अब तुम अनजान बन रही हो। तुम बहुत कुछ कहते हो, मैं किस किस का हिसाब रखूं? बदर ने कुछ कहना चाहा, फिर जैसे इरादा बदल कर बोला। अभी जहरा को देखकर मिलने चले जाने से पहले मैं तुमसे पूछ रहा था, तुम उस रोज रात को शेखर, मेरा मतलब है, संभल कर वो वजाहत करने लगा था, मगर वो बुरा मान गई थी। तुम क्यों समझते हो शेखर ऐसा कर सकता है? वो कोई भी कर सकता है। जब तक मैं उस चुगापोश को अपने सामने नहीं देख लेती, मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो शेखर ही है। तुमने उस रोज उसे अपने सामने देखा था? मैं वसूख से नहीं कह सकती कि वो चुगापोश ही था। हो सकता है वो कोई मुलाजिम वगैरह हो जो रात को किसी काम से गोदाम की तरफ जा रहा हो। आधी रात में मुलाजिम का गोदाम में क्या काम? शाम के बाद नौकर वगैरह अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इतनी रात गए कोई हवेली का फर्द ही। बहरहाल, जब तक साबित नहीं हो जाता कि वो कौन है, तब तक तुम उसे शेखर नहीं कहोगे। माया का लहजा ठोस और हतमी था। बदर बेसाख्ता जख्मी सा मुस्कुरा दिया। इतनी मोहब्बत है तुम्हें उससे? वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम क्यों जलते हो? मैं क्यों जलूंगा? वो फिर से अनजान बन गया। जैसे मैं जानती नहीं। क्या? वो चौंका। भरम रहने दो, उसे मत तोड़ना। वो मुबहिम सा मुस्कुराई, फिर कुछ सोच कर बोली, वो उस रात गोदाम गया था, आओ चलकर गोदाम देखाते हैं। क्या मतलब? وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ میرے ساتھ حویلی چلو، دیکھتے ہیں کہ گودام میں کیا ہے۔ جگہ دیکھ کر ہی علم ہو جائے گا کہ آج کل وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ مگر میں راجپوتوں کی حویلی نہیں جاتا۔ آج تم جاؤ گے، وہ جواب سنے بغیر حکم صادر کر چکی تھی، اور پھر بدر کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ پیپل کی جھکی شاخوں کے اس پار سے زہرا نے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے مطمئن سے ساتھ ساتھ روش پچلتے ہوئے دور جاتے جا رہے تھے۔ اور پھر زہرا چونکی۔ مایا نے بدر کا ہاتھ نہیں تھام رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے مایا کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر بدر نے معذرت کر لی۔ ابھی میرے لیے راجپوتوں کی حویلی جانا ممکن نہیں، لیکن میں آپ کی اس چوہا پوش کو ڈھونڈنے میں مدد ضرور کروں گا۔ اپنی کزن کا خیال رکھنا۔ جاتے سمے کہے گئے اس کے الفاظ پہ وہ بعد میں کافی دیر غور کرتا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پہ بندھے تھے، بال چوٹی میں مقید تھے، اور چہرے پہ سوچوں کا جال بچھا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح ٹہلتے ہوئے کچھ سوچے جا رہی تھی، پھر تھک کر پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ مہاراجہ پلنگ بھاری آبنوں سی لکڑی کا بنا تھا۔ بڑے بڑے موٹے پائے شیشم کے بنے تھے۔ چاروں کونوں پہ لگے آبنوں سی ڈنڈوں پہ پیتل کا کام نقش تھا، اور ڈنڈوں سے جڑی پٹیوں پہ گلابی پوت کے پردے گر رہے تھے۔ روپا، کچھ سوچ کر اس نے آواز دی۔ جانتی تھی کہ روپا آس پاس ہی ہوگی، اور بوتل کے جین کی طرح وہ واقعی اگلے ہی لمحے دروازے پہ تھی۔ جی مہم صاحب، مجھے قلم دواد بلکہ صرف کاغذ لا دو، اور ایک خط کا لفافہ بھی۔ کہہ کر وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آئی اور دراز کھول کر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ جب تک اس نے قلم ڈھونڈا، روپا کاغذ اور لفافہ لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ ایک رکا لکھ رہی ہوں، احتیاط سے بدر غازان تک پہنچانا ہے۔ وہ کاغذ میز پر رکھے تیزی سے انگریزی میں کچھ لکھ رہی تھی، مگر دھیان رہے کوئی پڑھے نہ، احتیاط سے چھپا کے لے کے جانا۔ رکا لکھ کر اس نے کاغذ کی دو تہیں لگائیں، اسے لفافے میں ڈالا اور لاک سے سر بمہر کر دیا۔ روپا لفافہ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ سوچتی نگاہوں سے قلم کو تکتی رہی، پھر گہری سانس لے کر سر میز پہ رکھ دیا۔ روپا ساڑی سنبھالتی، لفافہ ہاتھ میں دابے زینہ اتر کر آئی تو دیوان خانے میں پہلا سامنا گوپال سے ہوا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی اس کی نگاہوں میں لفافہ نہیں آیا تھا، مگر روپا نے خود سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میم صاحب نے یہ بدر غازان کے لیے دیا ہے۔ گوپال کے لب بھینج گئے۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اندر آؤ کہتا تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہایت بے رحمی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر صاف کاغذ پہ لکھا چھوٹا سا پیغام تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ اس بدھوار گوپال شکار پر چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں پرانے قبرستان میں تمہارا انتظار کروں گی، اس بھوت کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ اگر شب باشی ادھر کرنی پڑی تو کوئی مذائقہ نہیں، تم تیار رہنا۔ فقط مایا فرنانڈیز۔ گوپال کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نہایت نفاست سے لفافے کو دوبارہ سربیمہ کیا اور روپا کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ساتھ 5 روپے بھی۔ روپا خاموشی سے دونوں اشیاء سنبھالے باہر نکل گئی۔ یہ راستے میں کسی نے پڑھا تو نہیں؟ بدر نے رکا پڑھ کر قدرے فکر مندی سے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ ایسی جرت ہے کسی کی مہاراج کہ وہ آپ کا رکا پڑھے؟ وہ مطمئن ہو گیا اور جواب میں مثبت اشارہ اور انعام دے کر اسے رخصت کر دیا۔ روپا نے جب واپس حویلی میں قدم رکھے تو گوپال اس کا منتظر تھا۔ کیا کہا اس نے؟ لہجہ نفرت و چبھن سے بھرپور تھا۔ یہی کہ جواب مثبت ہے۔ پارٹ 8 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔